बड़े पापा, चाचा जी, आपको इस घर परिवार की कोई चिंता है भी या नहीं? कशिश का सवाल सुनकर दोनों ही चौंक गए। सुजीत जी ने हैरानी से उससे सवाल किया, बहू आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, घर में सब बड़ों की शादी हो गई, सबकी गृहस्थी बस गई, पर रजनी दीदी अब तक मायके में ही बैठी हैं। इतनी उम्र हो गई है उनकी, उनके छोटे भाई की भी शादी हो गई, पर उनकी शादी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। क्या आप लोग उनकी शादी नहीं करना चाहते? सारी जिंदगी उन्हें घर में बिठा कर रखना चाहते हैं। सोचिए बाहर सब क्या सोचते होंगे कि कैसा परिवार है, जवान बेटी घर में बैठी है पर किसी को उसकी शादी की कोई चिंता ही नहीं। बहू घर ले आए हैं पर बेटी को विदा करने का नाम ही नहीं ले रहे। कशिश ने एक बार फिर अपनी वाक्पटुता का शानदार प्रदर्शन किया और अपनी गहरी गहरी बातों के मकर जाल में दोनों को फंसाने की कोशिश करने लगी, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि दोनों आदमियों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं उसकी बातें सुनकर। कशिश की बात सुनकर पहले तो दोनों आदमी परेशान से एक दूसरे को शक्लें देखने लगे, फिर रामविलास जी ने कशिश की तरफ निगाहें घुमाते हुए गंभीरता से कहा, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं, उनके पिता उनका रिश्ता तय करके गए हैं। रिश्ता किया हुआ है पर शादी तो नहीं हुई है, और मैं तो शादी की बात कर रही हूँ। कशिश ने तपाक से जवाब दिया, उनकी शादी के लिए हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ईशान की शादी जैसे हुई है वैसे उनकी भी हो जाएगी। ईशान है वो अपनी दीदी की शादी करवा सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने खुद की शादी की है। रामविलास जी अब कुछ खफा खफा से नजर आए, उनके शब्दों में नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। ईशान ने शादी जैसे बड़े फैसले में उनकी राय विचार नहीं ली, शायद ये बात उन्हें पसंद नहीं आई थी। पहले तो कशिश हैरानी से उन्हें देखने लगी, फिर गंभीरता से बोली, बड़े पापा आप भूल रहे हैं कि बच्चे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, पर रहते हमेशा छोटे ही हैं, और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो बड़ों का फर्ज होता है कि बड़प्पन दिखाते हुए उनकी गलती भुलाकर उन्हें सही रास्ता दिखाएं। माना मिश्रा जी ने आप सबकी मर्जी पूछे बिना मुझसे शादी करके आप सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, पर गलती सिर्फ उनकी नहीं थी। आपने उन्हें कभी अगर एहसास करवाया होता कि आप उनके बड़े हैं, उनका परिवार है, तो वो शायद ये गलती कभी ना करते। खैर, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो बात बीत गई है जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। मैं आज की बात कर रही हूँ। पापा ने दीदी का रिश्ता तय किया क्योंकि आप सबने उनसे मुंह मोड़ लिया था और उन्हें चिंता थी कि उनके बाद उनकी बेटी का भविष्य कहीं अंधकारमय ना हो जाए। वो दीदी की शादी भी करवाकर दुनिया से विदा होना चाहते थे, पर यह संभव नहीं हो सका। दीदी का रिश्ता तय है पर शादी आज भी नहीं हुई। जैसा आपने कहा, मिश्रा जी अपनी तरह उनकी शादी भी सादगी से मंदिर में करवा सकते हैं, पर रजनी दीदी इस घर की बेटी है, और जहां तक मुझे पता है, बेटियां घर की इज्जत मान सम्मान होती हैं। मिश्रा जी की शादी का शायद इतना असर ना पड़ा हो, पर अगर दीदी की शादी ऐसे करवाई गई तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा, इसलिए मिश्रा जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। करने को तो वो इस घर से भी रजनी दीदी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा सकते हैं, पर आप घर के बड़े हैं, पापा के बाद आपका दायित्व है। इस घर की बेटी को इज्जत के साथ घर से विदा करें। अगर आपके होते हुए ये काम मिश्रा जी करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा कि घर के बड़ों के होते हुए छोटा सदस्य इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। कशिश पल भर ठहरी और गंभीरता से आगे कहना शुरू किया, सालों पहले जो हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस एक सवाल करना चाहूंगी कि किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप पापा, मिश्रा जी और दीदी को? अब तो पापा भी दुनिया में नहीं, फिर कैसा गुस्सा और कैसी नाराजगी। आप बड़े हैं मुझसे, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी आपसे, बस इतनी गुजारिश कर रही हूँ कि अंकल के घर जाकर दीदी की शादी की बात कर लीजिए और उन्हें इज्जत से इस घर से विदा कीजिए। इज्जत और मान मर्यादा के लिए ही इतने सालों से आप पापा से नाराज हैं, तो अब इसी इज्जत और मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए दीदी की शादी अपने आशीर्वाद के साथ करवा दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि कैसा परिवार है, बेटी की शादी की कोई चिंता ही नहीं, जवान बेटी को घर बिठाकर कान में तेल डालकर निश्चिंत बैठे थे। सवाल इस परिवार पर उठेगा, आगे जो आपकी इच्छा। कशिश की बातों से वहां का माहौल गंभीर हो गया। किचन में मौजूद रजनी की आंखों में आंसू भर आए। सीढ़ियों के पास खड़ा ईशान एक टक कशिश को देखने लगा। कितनी शांति और सहजता से कशिश ने सारी बातें उनके सामने रख दी थीं। कशिश ने आज बहुत ही कम शब्दों के प्रयोग से उन्हें आईना दिखा दिया था। उसके पूछे एक सवाल ने रामविलास जी को झंझोड़ कर रख दिया था। आखिर सालों पहले रिश्तों में ये फूट उन्होंने ही तो डाली थी। धीरज जी और उनके बच्चों से सभी रिश्ते तोड़ने का फैसला उन्हीं का था, जिस पर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। पर आज कशिश ने उनके फैसले पर न सिर्फ सवाल उठाया था, बल्कि उन्हें उनके फैसले पर एक बार फिर सोचने पर विवश कर दिया था। रामविलास जी कुछ देर खामोशी से बैठे रहे, फिर उठकर सीधे घर से बाहर चले गए। उनके यूं चले जाने से कशिश कुछ परेशान हो गई। सुजीत जी ने उसे चिंतित देखा तो उठकर खड़े हो गए और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, आपकी कोई गलती नहीं बहू, इसलिए आप परेशान मत होइए। आपने वो किया है जो कभी हम चाहकर भी नहीं कर सके। सालों पहले जो हुआ, छोटी भाभी ने जो किया उसमें धीरज भाई साहब की गलती नहीं थी, बस उन्होंने गलत इंसान से प्रेम किया, उन पर विश्वास किया, जिसकी वजह से हमारे घर परिवार की बहुत बदनामी हुई थी। धीरज भैया ने भाई साहब और मम्मी पापा के खिलाफ जाकर भाभी से शादी की थी और उनके लिए इस गलत फैसले ने सब तबाह कर दिया। बड़े भाई साहब को यही नाराजगी थी मंझले भाई साहब से, जो वक्त के साथ बढ़ती ही चली गई, पर अब लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। शायद बड़े भाई साहब को एहसास हो कि वो बेवजह की नाराजगी में परिवार को टुकड़ों में बांटे हुए हैं। शायद अब वो इस परिवार को फिर से एकजुट कर लें, रजनी और ईशान को अपना लें और मंझले भाई साहब के प्रति नाराजगी खत्म कर दें। सुजीत जी भी अपने दिल की बात कहकर और उम्मीद की डोर उसे थमाकर वहां से चले गए। महिमा जी और कौशल्या जी इस स्थिति में परेशान जरूर थीं, पर चुप ही रहीं। कहीं ना कहीं इन दोनों को भी कशिश और सुजीत जी की बातों से इत्तेफाक था। उनकी कड़वाहट को कशिश पहले ही दूर कर चुकी थी, अब दोबारा रिश्तों में मिठास भरने की बारी थी। आज घर में खाना तो बना, पर खाया किसी ने भी नहीं। ईशान को भी बीती सारी बातें याद आ गई थी, इसलिए वो भूखा ही दुकान लिए निकल गया। रजनी भी चली गई। शुभ्रा और शुभिका को कुछ मालूम नहीं था, तो कशिश ने उन दोनों को खाना खिलाकर लंच देकर स्कूल भेज दिया था। महिमा जी और कौशल्या जी अपने अपने कमरे में थीं। कशिश सब काम निपटाकर कमरे में चली गई थीं और घाट को देखते हुए आत्ममंथन कर रही थी कि कहीं उसने आज कुछ ज्यादा या गलत तो नहीं कह दिया।